Om Shanti. 21st January 1971. सिर्फ एक शब्द ऐड करो, अटेंशन, फिर यह बहुरूप एक ही संपूर्ण रूप बन जाएगा. इसलिए अब कदम कदम पर अटेंशन. सुनाया था कि आजकल सर्व आत्माएं सुख और शांति का अनुभव करने चाहती है, ज्यादा सुनने नहीं चाहती. अनुभव कराने के लिए स्वयं अनुभव स्वरूप बनेंगे, तब सर्व आत्माओं की इच्छा पूर्ण कर सकेंगे. दिन प्रतिदिन देखेंगे जैसे धन के भिखारी भिक्षा लेने के लिए आते हैं, वैसे शांति के अनुभव के भिखारी आत्माएं भिक्षा लेने के लिए तड़पेंगी. अब सिर्फ एक दुख की लहर आएगी तो जैसे लहरों में लहराती हुई आत्माएं व लहरों में डूबती हुई आत्मा एक तिनके का भी सहारा ढूंढती है, ऐसे आप लोगों के सामने अनेक भिखारी आत्माएं यह भीख मांगने के लिए आएगी. कौन सी भीख? सुख शांति. तो ऐसी तड़पती हुई या भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने के लिए अपने को क्या करना है? भरपूर करना है. अपने को क्या करना है संतोष भाई? अपने को क्या करना है? अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से भरपूर किया हुआ अनुभव करते हो. धीरे धीरे यह आवाज फैलेगा कि सुख शांति का अनुभव किसके पास मिलेगा? किसके पास? कि ब्रह्मा कुमार के पास का अनुभव ब्रह्मा कुमारियों के पास मिलेगा. भटकते भटकते कहां आकर आत्मा पहुंचेगी? आखिरी ठिकाने पर. आखिर ठिकाने पर भटकते भटकते कहां आके पहुंचेगी? असली द्वार पर अनेकानेक आत्माएं आकर पहुंचेगी. 21st January 1971. तो क्या सुना? अभी क्या करो? एक शब्द ऐड करो. कौन सा सब शब्द है वो? अटेंशन. फिर यह बहुरूप एक ही संपूर्ण रूप बन जाएगा. इसलिए अब कदम कदम पर अटेंशन. सुनाया था ना कि आजकल सर्व आत्माएं सुख और शांति का अनुभव करने चाहती है, ज्यादा सुनने नहीं चाहती. अनुभव कराने के लिए स्वयं क्या करो? स्वयं अनुभव स्वरूप बनेंगे, तब सर्व आत्माओं की इच्छा पूर्ण कर सकेंगे. दिन प्रतिदिन देखेंगे जैसे धन के भिखारी भिक्षा लेने के लिए आते हैं, वैसे शांति के अनुभव के भिखारी आत्माएं भिक्षा लेने के लिए तड़पेगी. अब सिर्फ एक दुख की लहर आएगी तो जैसे लहरों में लहराती हुई आत्माएं व लहरों में डूबती हुई आत्मा एक दिन का भी सहारा ढूंढती है, ऐसे आप लोगों के सामने अनेक भिखारी आत्माएं या भीख मांगने के लिए आएगी. तो ऐसी तड़पती हुई या भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास मिटाने के लिए क्या करो? अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से भरपूर किया हुआ अनुभव करते हो. धीरे धीरे आवाज फैलेगा कि सुख शांति का अनुभव ब्रह्मा कुमारियों के पास मिलेगा. भटकते भटकते असली द्वार पर अनेकानेक आत्माएं आकर पहुंचेगी. तो कौन सा शब्द ऐड करो? अटेंशन. अटेंशन अर्थात अटेंशन मतलब एक्स्ट्रा ध्यान. अटेंशन अर्थात सावधान. अटेंशन अर्थात केयरफुल. अटेंशन अर्थात क्या फोकस नैरोइंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज नोन एज अटेंशन. हमारा जो ध्यान है उसको फोकस कर देना, नैरो कर देना, एक स्थान पर केंद्रित कर देना, केंद्रीभूत कर देना, ध्यान का केंद्रीकरण अर्थात अटेंशन. और अटेंशन अर्थात अवधान, अटेंशन अर्थात टेंशन फ्री, अटेंशन अर्थात एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन. दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का क्या सजगता, लक्ष्य के प्रति सजगता, अलर्ट रहना. तो बाबा कह रहे हैं एक शब्द का एडिशन करो, वो शब्द है अटेंशन. किस चीज में अटेंशन की आवश्यकता है ब्राह्मण जीवन में? जो भी करेंगे उसके लिए अटेंशन की आवश्यकता है. और स्वयं को संपन्न बनाने में अटेंशन, और ज्ञान में अटेंशन, योग में अटेंशन, सेवा में अटेंशन, और धारणाओं में अटेंशन, मर्यादाओं में अटेंशन. मर्यादाएं जितनी बुद्धि में स्पष्ट है उतना श्रीमत का उल्लंघन कम होगा. जब व्यक्ति मर्यादाओं को थोड़ा सा भूलता है उस समय गलती होती है. यदि मर्यादाओं के प्रति सजग है तुरंत गलती नहीं होगी. जब मर्यादाएं विस्मृत होती है, नियम विस्मृत होते हैं, तब गलती होती है. और किसमें अटेंशन? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा. किसमें अटेंशन? कर्तव्यों के प्रति, ड्यूटीज के प्रति अटेंशन. तो अनडिवाइडेड अटेंशन और डिवाइडेड अटेंशन, ऐसे दो शब्द है. एक है अटेंशन जो डिवाइड हो गया है, दूसरा है जो अटेंशन डिवाइड नहीं हुआ, खंडित और अखंडित. एक है डिवाइडेड अटेंशन और दूसरा है अनडिवाइडेड अटेंशन. तो हमारा ध्यान कभी भी खंडित ना हो, या जो भी कार्य किया जाए वो फुल अटेंशन से किया जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो धारणा, सेवा, योग, कुछ भी. क्या करे? हाउ टू इंक्रीज अटेंशन स्पैन, अपना अटेंशन स्पैन कैसे बढ़ाया जाए? एक तो अटेंशन स्पैन अर्थात एक चीज में एकाग्र कितना समय व्यक्ति हो सकता है. जैसे एक बच्चा है, उसको कुछ किताब, एक पोएट्री दी पढ़ने के लिए, और उसको कहा कि ये पोएट्री पढ़ो और उसको याद करो, पर उसका अटेंशन स्पैन ही नहीं है. वो एक एक मिनट में कुछ और करता है. उसको कहा तुमको आधा घंटा इधर ही बैठना है, पर वो बैठ नहीं पाता है. उसकी बुद्धि कुछ कुछ करेगा, डब्बा खोलेगा, चीज कुछ देखेगा, इधर इधर जाएगा, उधर जाएगा, बुक आगे पीछे करेगा, कुछ तो करेगा. अटेंशन स्पैन बहुत कम है. ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम, ऐसे बच्चों की बहुत सारी बीमारियां भी है कि जिसमें अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है. कुछ कुछ बच्चों का एक मिनट भी स्थिर नहीं बैठते, एक मिनट भी स्थिर नहीं. यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, एक मिनट के लिए भी स्थिर नहीं रह सकते ना? और वो थकते भी नहीं है, थकते नहीं है बिल्कुल. एक मनोवैज्ञानिक था, और जिसका बच्चा इतना शरारती था, एकदम छोटा सा था परंतु बिल्कुल भी रुकता नहीं था, तोड़ फोड़ तोड़ फोड़। तो उसने अखबार में इश्तियार दिया था एक, कि वो एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता था या देखना चाहता था कि ऐसा कोई व्यक्ति है संसार में जो वो सब चीजें करे जो मेरा बेटा करता है और ना थके। तो एक बहुत बड़ा पहलवान था, वो आया, उसने कहा मैं तो ये सब कर सकता हूं। तो उसको और उसके बेटे को छोड़ दिया। उसका काम था कि जो जो बेटा करेगा उस पहलवान को वो करना है, बेटे को फॉलो करना है। तो वो सुबह से लेके तो शाम तक का समय दिया गया, पर दोपहर तक ही पहलवान चारों खाने चित। वो बच्चा कभी इधर कूदता कभी उधर कूदता, कभी इधर जाता कभी उधर जाता, कभी खटिया के नीचे कभी खटिया से बाहर, कभी यहां कूदता कभी वहां कूदता, कभी बालकनी में जाता कभी किचन में जाता, कभी चीजें पटक पटक के फेंकता। तो वो पहलवान भी सब कुछ करने लगा पर दोपहर तक ही थक गया, इतना जबरदस्त स्टेमिना एनर्जी। और ऐसे जो होते हैं उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। पर तो अटेंशन स्पैन बढ़ जाए उसके लिए क्या किया जाए? एक 1920 में वाराणसी काशी बनारस के जो नरेश थे उनका ऑपरेशन करना था अपेंडिक्स का, तो उन्होंने कहा ऑपरेशन करो परंतु एनेस्थीसिया मैं नहीं लगाऊंगा, मुझे एनेस्थीसिया नहीं देना। डॉक्टरों ने समझा ऐसे कैसे हो सकता है, ऑपरेशन अपेंडिक्स का कोई छोटा ऑपरेशन नहीं है, चमड़ी काटी जाएगी फिर अंदर की अंदर का सबक्यूटेनियस टिश्यू और सब कुछ अंदर का काटा जाएगा, उसमें तो करना नामुमकिन है, असंभव है कि इतना बड़ा पेट का ऑपरेशन और बिना एनेस्थीसिया बिना क्लोरोफॉर्म के, उस समय क्लोरोफॉर्म था। उसने कहा नहीं, और उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी, वो अपेंडिक्स खराब हो रहा था अंदर से। तो उसने कहा नहीं, बिना ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन करना है। तो लंदन से जो सर्जन आए थे उसने ऑपरेशन किया था उनका, तो उसने कहा कि पर मुझे भगवद गीता हाथ में दे दो, भगवद गीता हाथ में दे दो। तो उन्होंने भगवद गीता ली और भगवद गीता पढ़ना चालू की और उधर से उनको कहा ऑपरेशन चालू करो अपना, और वो होश में थे। उन्होंने कहा कि मुझे बेहोश नहीं करना, मैं बेहोश नहीं होना चाहता। और उन्होंने भगवद गीता जो उनको पूरी याद थी परंतु फिर भी पढ़ते गए और 5 मिनट के बाद उसको छोड़ दिया और बस बैठे रहे, और वो ऑपरेशन 1.5 घंटा तक चला, जरा सी आवाज नहीं, जिंदा व्यक्ति को काटा जा रहा है, ऑपरेशन किया निकाला सारा। उन्होंने कहा ये कैसे कर रहे हो आप, कैसे किया? उन्होंने कहा कि सारा ध्यान जैसे मैं यहां था ही नहीं, अपने अवधान को अपने ध्यान को संपूर्ण आत्म केंद्रित कर दिया, मैं आत्मा हूं, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, वायु मुझे सुखा नहीं सकता, मैं वह चैतन्य आत्मा हूं। शस्त्र मुझे भेद नहीं सकते, पानी मुझे गीला नहीं कर सकता, केवल इसका चिंतन करते रहे कि मैं देह नहीं आत्मा हूं। ऑपरेशन चालू रहा, ऑपरेशन पूरा हुआ और वो इतना डिटैच, अटेंशन को देह से निकालकर जो देह नहीं है उस तत्व पर केंद्रित कर दिया। तो क्या किया जाए जिससे अटेंशन स्पैन बढ़ जाए? क्या क्या किया जा सकता है? एक शब्द की एडिशन करो अटेंशन, तो क्या करेंगे? कैसे? वही ज्ञान योग धारणा सेवा अटेंशन के लिए। हाँ, इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा? क्रिएट इंटरेस्ट। अटेंशन को बढ़ाने के लिए क्रिएट इंटरेस्ट. जब तक जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है वहां अटेंशन कहां से होगा. छोटा सा बच्चा है, लड़का है, स्कूल में जाने वाला, मैथ्स की बुक्स उसके सामने रहती है, उसको नींद आती है, बिल्कुल पसंद नहीं है उसको. और वहीं पर जैसे ही क्रिकेट मैच या कार्टून शो टीवी पर होता है तो उसको कितना इंटरेस्ट है उसमें कार्टून देखने में. हाँ, हम लोग हॉस्पिटल में राउंड्स लेते हैं तो पेशेंट्स के रिलेटिव्स के साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं. राउंड्स जब जाते हैं तब टीवी देखते रहते हैं बच्चे, और जब हम बीच में आ जाते हैं तो उसको इतना डिस्टर्बेंस होता है, इधर हटा हटा के देखता है वो, उसको इतना इंटरेस्ट है. छोटा भीम और क्या क्या वो है ना सारे कार्टून. बहुत इंटरेस्ट होता है उसको, जरा भी उसको सहन नहीं कर सकता है ये आ गए बीच में खड़े हो गए, उसका पूरा मजा किरकिरा हो गया. वो ऊपर चढ़ के इधर उधर से देखता है क्योंकि उसका सारा फोकस वहां पर है. तो सबसे पहले अटेंशन के लिए क्या चाहिए? इंटरेस्ट. दूसरा, तो इंटरेस्ट को बढ़ाना है. किस में इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे? योगी बनने में इंटरेस्ट बढ़ाना है, ज्ञानी तो आत्मा बनने में इंटरेस्ट बढ़ाना है, नई नई पॉइंट्स ढूंढने में इंटरेस्ट बढ़ाना है. कल की मुरली, रात्रि क्लास, बाप तुमको गुई ये बातें समझाते हैं, ये पढ़ाई रेगुलर पढ़नी, एक दिन भी मिस ना हो. अगर मिस हो गई तो फिर काम, ऐसी ऐसी नई पॉइंट्स होती है, एक पॉइंट भी मिस हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान है. मुरली की एक लाइन भी मिस ना हो, नॉट अ सिंगल लाइन. ये ऐसी लाइन पावरफुल आ गई और हमने मिस कर दी, और वो लाइन में इतनी पावर भरी थी. तो मुरली में इंटरेस्ट जनरेट करना है. कैसे करेंगे? ये सोचना कि आज कौन सी नई पॉइंट आती है, ताक में रहना है. जैसे शिकारी होता है ना, जैसे ही पक्षी देखा कि मारा, वैसे ही कौन सी नई पॉइंट आती है. बिल्ली की ऐसी करती है तो कौन सी नई पॉइंट आती है, कहां आती है, क्या अर्थ हो सकता है उसका, कैसी सूक्ष्मता उसमें हो सकती है. एक एक बात इतनी सूक्ष्म है मुरलियों में. उस एक एक पॉइंट को धारण करना वही शक्ति का एकमात्र स्रोत है. बाकी कोई शक्तिशाली हमको नहीं बना सकता. कितनी भी किसी से राय लो, किसी से बैठो, जीवन की समस्या एक एक घंटा बैठकर किसी को सुनाए, कोई कुछ नहीं करेगा. खुद से ही उत्तर निकलेगा. मुरली में ही उत्तर है, चिंतन की कमी है. तो इंटरेस्ट को बढ़ाना है. दूसरा अटेंशन स्पैन. अटेंशन अभी ये इतना पढ़ना है, इसमें ये पढ़ते पढ़ते अटेंशन चाहिए. ये अभी क्लास में बैठे है, इस क्लास में यहां पर मुरली में बैठे हुए अटेंशन यहां वहां ना जाए, उसके लिए क्या करें? एक तो इंटरेस्ट बढ़ गया, दूसरा उसके महत्व को समझना, इंपॉर्टेंस, नो इट्स इंपॉर्टेंस. जितना योग का इंपॉर्टेंस हम समझेंगे, जितना ज्ञान का इंपॉर्टेंस हम समझेंगे, जितना यज्ञ सेवा का इंपॉर्टेंस हम समझेंगे, उतना ही सेवा में अटेंशन. एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा है, जिसमें ऐसे वहां वाक्य है कि मुन्नी बहन जी ने बाबा के सामने फलों की थाली रखी और फिर बाबा के महावाक्य. बाबा ने कहा, विदेशी भी बैठे हुए हैं, कि ऐसे नहीं कि बनाया नहीं और बस बाबा को भोग लगा दिया, बस बाबा को भी चला रहे हैं. विधि जितनी होगी उतनी ही सिद्धि होगी. ऐसा नहीं हमको फल बनाना जान पर आ गया और इसके लिए फल है वही रख दिया बाबा के सामने और भोग लगा दिया. जहां विधि नहीं वहां सिद्धि भी कम. जितना विधि पूर्वक कर्म होगा उतनी ही सिद्धि होगी, जितना विधि पूर्वक होगा उतना ही एक्सलेंस होगा, श्रेष्ठता होगी। जितना ही एक्यूरेसी परफेक्शन होगा उतना ही उसमें सफलता होगी। बी ई परफेक्ट इवन एज योर फादर दैट आर्ट इन हेवन इज परफेक्ट। जीसस कहता है बाइबल में, वैसे ही परफेक्ट बनो जैसे तुम्हारे पिता परफेक्ट है। तो उसके महत्व को समझना है, भोग के महत्व को समझना है, ब्रह्मा भोजन के महत्व को समझना है, यज्ञ की वस्तुओं के महत्व को समझना है, सेवा के महत्व को समझना है, मुरली और मुरली चिंतन के महत्व को समझना है, सुनना सुनना, पढ़ना, याद रखना। कल भी कहा ना बाबा ने, कोई कोई है जो याद रखते हैं वो हाथ खड़े करो, कोई कोई है जो याद रखते हैं अटेंशन एडिशन करते हैं, रहस्य बताते हैं, रसीले नमूने। कल था ना रात्रि क्लास में, कोई सीधा पढ़ लेते, कोई पढ़ते परंतु याद कुछ नहीं रहता है। पढ़ तो लिया मुरली, अब ये मत पूछो क्या है, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का याद है। वही तो था बाप आए पतित पावन बनाने, यही इसी तरह की कुछ बातें थी। तो रसीले नमूने, महत्व को जानना है। तीसरा अटेंशन, कोई चीज जैसे मुरली सुन रहे हैं उस समय अटेंशन, एम और अटेंशन के लिए क्या किया जाए। मुरली सुन रहे और अटेंशन इधर उधर जा रहा है, क्या करे? स्वरूप बन के सुनना। और क्या करे? आई कॉन्टैक्ट, अटेंशन स्पैन बढ़ाने के लिए कहा जाता है आई कॉन्टैक्ट। ये बताया जाता है भाषण क्लास सुनते समय, मुरली सुनते समय जो व्यक्ति सामने बैठा है उसके साथ थोड़ा आई कॉन्टैक्ट चाहिए, नहीं तो वो उधर सुना रहे, हम नीचे देख रहे, ऊपर देख रहे, इधर देख रहे। हम एक है भाषण देने वाला, दूसरा है भाषण सुनने वाले, एक है वक्ता, एक है श्रोता। श्रोताओं के भी कुछ कर्तव्य है लिसनिंग, वो किस तरह सुन रहा है तो ही अटेंशन स्पैन रहेगा। अगर आई कॉन्टैक्ट है तो जितना ज्यादा आई कॉन्टैक्ट उतना ज्यादा अटेंशन स्पैन रहेगा, ये सुनते समय। फिर अगला है डिक्रीज डिस्ट्रैक्शंस, कि जो कुछ डिस्टर्ब करने वाली चीजें है बीच बीच में अटेंशन करते समय, डिस्ट्रैक्शंस जो है, डिस्ट्रैक्शंस अर्थात जो बुद्धि को कहीं और खींच लेती है, वो जितने डिस्ट्रैक्शंस है उसको हटाना। जैसे मुरली पढ़ रहे हैं बैठकर चिंतन करना है तो ये मोबाइल थोड़ा बाहर चाहिए, बाजू में चाहिए, नहीं तो इधर मुरली एक लाइन पढ़ी और इधर से एक व्हाट्सएप और इधर एक मैसेज और इधर इधर भी कुछ कर रहे, इधर भी कुछ कर रहे, इधर भी कुछ कर रहे, इधर भी कुछ कर रहे। मल्टीटास्किंग जो है वो न करना, ये अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस में आता है। मल्टीपल टास्किंग और सिंगल टास्क, मल्टीपल टास्क में व्यक्ति करता तो है परंतु अटेंशन डिवाइडेड है वहां पर मल्टीटास्किंग में। इसके लिए क्या चाहिए? जितने डिस्ट्रैक्शंस है, वो डिस्ट्रैक्शंस आवाज हो सकता है, जहां बहुत भीड़ है वहां से हट जाओ, अगर भीड़ है बहुत आवाज है आवाज से थोड़ा दूर चले जाओ, एकांत में जाना है, एकांत में बैठकर मुरली का मंथन अध्ययन करना। जैसे बाबा उदाहरण देते हैं पादरियों का, एकांत में क्या करते हैं, माला फेरते हैं, वैसे एकांत में आवाज बहुत ज्यादा है गोवे, आवाज डिस्ट्रैक्शन है, बहुत अधिक लाइट है वो भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कभी कभी, बहुत अधिक साउंड वॉइस पोल्यूशन या फिर साधन सारे, फोन बज रहा है पांच पांच मिनट में, वहां आप अटेंशन इतना नहीं दे सकते। तो जितने डिस्ट्रैक्शंस है, जितने ध्यान को खींचने वाली चीजें है, उन सबको दूर करना, कम कर देना। और डिस्ट्रैक्शंस कौन कौन से है? व्यक्ति आके कोई डिस्टर्ब कर रहा है वो भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, वो सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर जाना। और अटेंशन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? हो गया महत्व इंपॉर्टेंस अटेंशन के लिए क्या करेंगे. फिर यहां कुछ और बातें बताई जाती है जैसे कि एक्सरसाइज. जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनका अटेंशन अच्छा होता है, जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते उनका अटेंशन कम होता है. जो वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं डेली 30 मिनट्स कम से कम, उनमें फुर्ती होती है एक, क्योंकि जॉगिंग करने से, वॉकिंग करने से, रनिंग करने से, एक्सरसाइज करने से कुछ हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, हैप्पीनेस हार्मोन्स, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन से निकलते हैं जो कि अच्छी फीलिंग की अनुभूति कराते हैं. नहीं तो क्लास में बैठे नींद, मुरली में बैठे नींद, योग में बैठे नींद, योग में बैठे परंतु ऐसी आंखें बंद है, कंटिन्यूस बंद, क्या अनुभव हो रहा है? कुछ भी नहीं. चाहे प्राणायाम चाहे आसन कुछ भी, ये अटेंशन के लिए बहुत जरूरी है. उसके बाद है फूड, हेल्दी डाइट, लाइट डाइट, ऐसा भोजन जो सम्यक आहार है, जो अति निद्रा को ना लाए, प्रमाद को ना लाए, लेजीनेस को ना लाए, एक्साइटमेंट भी ना करे बहुत ज्यादा, उत्तेजना ना लाए, वह जो आहार है वो सम्यक आहार है. ऐसा हेल्दी डाइट से अटेंशन होगा. टू स्पाइसी, जिसमें बहुत सारे मसाले और बहुत स्पाइसेस है और बहुत तीखा है, वह अटेंशन स्पैन कम हो जाता है. फूड, एक्सरसाइज, उसके बाद है स्लीप. अगर स्लीप ही पर्याप्त नहीं है तो अमृत वेला नींद आएगी, क्लास में नींद आएगी, या नींद ही अच्छी नींद नहीं है, टूटी टूटी नींद है, सुबह उठने के बाद में फ्रेश नहीं लगता है. नींद तो की है परंतु नींद के लिए तो चले गए 10 बजे पर 12 बजे तक नींद ही नहीं आती है, करवटे बदलते रहते हैं इधर से उधर उधर से उधर. नींद मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है. क्यों? क्या इतना ये ज्ञान है इतने सालों का, उस ज्ञान ने नींद को ठीक क्यों नहीं बनाया? कुछ तो कारण होगा. आनंद महात्मा बुद्ध से पूछता है कि आपको मैं देखता हूं रात भर आप बस जैसे सोते हो एक करवट पर, वैसे पूरी रात वैसे ही हो जाते हो, सोते हो, अगर इस करवट में सोए तो पूरी रात वैसे ही, उस करवट में सोए तो पूरी रात वैसे ही, जरा भी नहीं हाथ हिलता. आप क्या रात में भी सोते समय भी जागे रहते हो? हमें तो पता ही नहीं चलता कहां सोते हैं, सोए कहां से और उठे कहां से. सोए समय कितना पूरा गोल गोल ही घूम जाते हैं, कोई तो चक्र लगा देते पता नहीं चलता है. उन्होंने आनंद कहता है आप कई बार आपने देखा होगा महात्मा बुद्ध का सोता हुआ भी चित्र है, ऐसे बस एक ही करवट में ऐसे बैठे हुए हैं और वैसे ही है. तो आप करवट नहीं बदलते, कुछ भी नहीं करते. वो कहते हैं मेरा मन इतना शांत हो गया है कि अब मुझे करवट बदलने की आवश्यकता. करवटे वो बदलता है जो अशांत है, जो जितना अशांत वो उतने अधिक करवटे बदलता है रात भर, और जो जितना शांत वो नींद भी योग निद्रा है. फिर वहां पर वो नींद में भी जागरण है, नींद कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी प्रश्न है, क्योंकि आत्मा को नींद की आवश्यकता नहीं है, शरीर को आराम की आवश्यकता है. हाँ, आराम का एक साधन नींद है, परंतु वही आराम यदि बिना नींद के भी हो जाए तो फिर नींद की आवश्यकता ही नहीं है. बाबा कहते अशरीरी अवस्था में तुम कहां पे भी चले जाओ थकोगे नहीं. क्यों? आत्मा, इसका मतलब थकान का कोई और कारण है. अशरीरी अवस्था में यहां से नीचे तक चले जाओ तो थकोगे नहीं, और देहभान की अवस्था में यहां से नीचे तक चले जाओ तो दो दिन रेस्ट अगले. परंतु अशरीरी अवस्था में कुछ भी करो, कितनी भी सीढ़ियां चढ़ लो, बाबा कहते हैं तुम थकोगे नहीं. तो ये तीन चीजें हैं, एक्सरसाइज, डाइट और स्लीप. ब्राह्मणों के जीवन में एक्सरसाइज शायद छूटती जा रही है, वॉकिंग कम है, टाइम नहीं है, सेवाएं बहुत है, एडजस्ट नहीं हो रहा है रूटीन। वो कहते हैं हम तो बहुत फिट है, हमारा ना वजन ज्यादा है ना कम है, ठीक ठाक है। तो ये तो कोई कारण नहीं है, एक्सरसाइज के अपने स्पिरिचुअल बेनिफिट्स है, माइंड को फ्रेश रखता है। तो ये तीन, तो ये सारे अटेंशन लाने की विधियां है। तो इंटरेस्ट क्रिएट करना है, उसके महत्व को जानना है, आई कांटेक्ट एक, क्योंकि सबसे ज्यादा अटेंशन हमको चाहिए सुनने में, हम क्या सुन रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस जो भी है, डिस्टर्बेंस, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, डिजिटल डिस्टर्बेंसेस, वो सारे थोड़े समय के लिए तो दूर चाहिए। नहीं तो जैसे किसी को कहा गया ये मुरली पढ़नी है और इस पर बोलना है, इतना पैराग्राफ है, टाइम दिया गया एक दिन, हम कैसे उसको पढ़ते हैं, एक बार पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, लिखा, याद किया, क्या किया उसका। अगर अटेंशन बहुत ज्यादा है, एकाग्रता बहुत ज्यादा है, तो ये पढ़ते समय ये जितना है उससे भी परे जो चीजें है इससे जुड़ी वो बुद्धि में आएगी। अगर अटेंशन नहीं है तो एक लाइन पढ़ी और दूसरी लाइन पढ़ते पढ़ते पहली लाइन भूल गई, वो उससे क्या कनेक्शन है, ये छूट रहा है। अटेंशन अर्थात ये पूरा जो पढ़ रहे वो एक हो गया है, अटेंशन अर्थात ये जो पूरा पढ़ा और ये जो पढ़ा इसका उधर जो पहले पढ़ा था उसके साथ क्या कनेक्शन है, ये लिंक हो गया। जितना अधिक अटेंशन उतना ग्रास्प अधिक व्यक्ति कर सकता है। और फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे नहीं पढ़ते हैं, कैसे पढ़ने लगते हैं, ऐसे ऐसे एक है ऐसे ऐसे पढ़ना, ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा, फिर धीरे धीरे पढ़ना होगा ऐसे, फिर उल्टा, फिर ऐसे ऐसे, यहां ये है, यहां ये है, यहां ये है, लाइन नहीं, शब्द नहीं, लाइन की लाइन, लाइन नहीं, पैराग्राफ के पैराग्राफ, पैराग्राफ के पैराग्राफ से एक साथ। तो अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन, दूसरी बात यहां कही अनुभव, पहले खुद अनुभव करो और फिर ही क्या करा सकते हो, दूसरों को अनुभव करा सकते हो। जिसने खुद अनुभव नहीं किया शांति और सुख का, तो ये जो भिखारी सामने आएंगे उनको कैसे अनुभव कराएंगे। हमारी दुकान है सुख और शांति की, और दुकान में स्टॉक ही नहीं है, और ग्राहक आ जाए तो क्या देंगे उसको, बाजी वाले को रेफर करना पड़ेगा, अनुभव बहुत सूक्ष्म चीज है और अनुभव के लिए बहुत त्याग चाहिए, बहुत तपस्या चाहिए। अध्यात्म के छोटे छोटे अनुभवों के लिए बड़ी तपस्या चाहिए, तभी बात है। इतने सस्ते और इतने सहज नहीं है कि सेंटर से आके डायमंड हॉल में चले गए, बाबा सामने बैठे हैं और बाबा के सामने भी पहुंच गए, टोली भी ले ली बाबा के हाथ से, बाबा की दृष्टि भी ले ली और अनुभव हो गया, जरूरी नहीं है। अनुभव हो सकता है बहुत पीछे वाले को, कोई माता बैठी है उसको हो रहा है और सामने वाले को कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि सामने वालों के लिए शायद हो सकता है वो कारोबार है और किसी के लिए परमात्मा मिलन का अवसर है, अनुभव वहां होगा। तो अनुभव बहुत सूक्ष्म चीज है, इतना सहज वो नहीं आता। हम एक कविता पढ़ रहे थे, ये कविता मराठी की है, कविता कहो या भंग, आनंदाचे डोहे आनंद तरंग, आनंदची अंग आनंदाचे। कल बाबा ने कहा था मौजो, परसों कहा था संडे की मुरली, मौजों का ये युग है, मौजों के नजारे है, संत बता रहा है ये जो परमात्मा है ये डोही अर्थात जैसे कि एक झील है पॉन्ड एक लेक किसकी आनंदा से उसकी तरंगे भी आनंद ही आनंद है सब कुछ आनंद है काय सांगो झाले काही चिया बाही पुढ़े चाले नाही आवड़ी ने ऐसी अवस्था आई है कि अब आगे नहीं चला जाता संसार से वैराग ऐसी अवस्था आ गई है कि यहां जो भी दिखाई दे रहा है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है भोजन भवन भलो नहीं लागे मेरा सी अवस्था कुछ भी अच्छा नहीं लगता यहां का तो गर्भाचे आवड़ी मातेचा डोहड़ा तेथीचा जिवाड़ा तेथे बिंबे जैसे माँ है उसके गर्भ में बच्चा है और बच्चा जो चाहता है वो माँ में प्रकट होता है उसी तरह वो लिखता है तुका मने तैसा उतला से ठसा अनुभव सरीसा मुखा आला मेरे भी मन हृदय में जो भी इच्छाएं है वो मुख से प्रकट हो रही है जैसे मां के गर्भ में बच्चा है और बच्चा जो भी इच्छा करता है तेथी से जीवाड़ा तेथे बिंबे मां के गर्भ के बच्चा जो चाहता है वो मां के हृदय में प्रकट होती है वो इच्छा ऐसा उदाहरण दिया है गर्भाचे आवड़ी मातेचा डोहड़ा तुका मने तैसा ओतला से ठसा अनुभव सरीसा मुखा आला अनुभव ऐसी चीज है कि मेरे हृदय में वो अनुभव हुआ है हृदय ने अनुभव किया है अब वो अनुभव रोक नहीं सकता कितना भी मैं उसको रोकूं वो मुख से निकल ही रहा है वो अनुभव इतना प्रगाढ़ है इतना सघन है कि अब शब्दों द्वारा प्रकट हो रहा है इसके लिए जितने संत है उनके शब्दों में छोटे से शब्द है पर कितना प्रभाव है कितना जादू है क्योंकि कहां से आ रहे हैं शब्द हृदय से आ रहे हैं अनुभव से आ रहे हैं अनुभव की अथॉरिटी है क्योंकि आत्मा ने अनुभव किया है उस परमात्मा प्रेम को उस वैराग को अनुभव किया है अब वो रोका नहीं जा रहा है इसके लिए बाहर प्रकट हो रहा है इतना भर गया है कि बाहर आ रहा है फिर वहां शब्द अपने आप जुड़ते हैं शब्दों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं शब्दों में क्या बोला जाए क्या नहीं बोला जाए ये नहीं सोचना पड़ता है तब तो भाषा का जैसे आह्वान जैसे मराठी में ही संत ज्ञानेश्वर ज्ञान इतना अंदर भरा है आह्वान कर रहे ये मराठी चिया नगरी ब्रह्म विद्येसा सुकाड़ करी वो कहते हैं कि हे परमात्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या मराठी की नगरी में तू प्रवेश कर इस भाषा की नगरी में भाषा मुझे पता नहीं क्या बोलना कैसे बोलना शब्द मेरे पास नहीं है ये मराठी चिया नगरी ब्रह्म विद्येसा सुकाड़ करी घेणे देने सुखचीवरी ओ देही या जगा मुझे संसार की आत्माओं को देना है वह ब्रह्म ज्ञान वह परमात्म ज्ञान हे उस ज्ञान का ही आह्वान किया जा रहा है हे ज्ञान तू प्रकट हो इस नगरी में तो शब्द अपने आप आएगा कब जब अनुभव हुआ है आत्मा को फिर शब्द सेकेंडरी है एक्सपीरियंस इज द प्राइमरी स्वामी विवेकानंद ने कहा है वर्ड्स आर सेकेंडरी इट्स द थॉट दैट ट्रेवल्स फास्ट All words are secondary details. शब्द जो है दो नंबर पर है First है experience. तो जहां अनुभव हो जाए किसका सुख का शांति का किसका कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा योग करने की आवश्यकता नहीं केवल आत्मा के जो सात गुण है उस एक एक गुण का गहरा अनुभव सुख स्वरूप हूं बस फिर यहां आत्मा यहां से निकलकर वहां जा रही ये कर रही ये सब एक तरफ केवल सात गुणों का सात गहरे अनुभव एकांत में जाओ बैठो और अनुभव करो किस बात का अनुभव एक छोटा सा संकल्प, आत्मा अविनाशी है, बस कि मैं आत्मा अविनाशी हूं, शस्त्र मुझे काट नहीं सकते, हवा मुझे स्पर्श नहीं कर सकती, पानी मुझे गीला नहीं कर सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, एक ही संकल्प, मैं अमर अजर अविनाशी आत्मा हूं। यह इतना काफी है, फिर बाकी सब ज्ञान का विस्तार है। तो अपने अटेंशन स्पैन को बढ़ाना है, एक ये आज का काम, मुरली सुनेंगे फुल अटेंशन से, ऐसी उसको सुनो, ऐसी उसको सुनो कि शब्द अंकित हो जाए। नंबर वन भस्मासुर, नंबर वन अजामिल कौन है आशीष भाई, और अजामिल कौन है? जो बाप को याद नहीं करते, जो बाप को फरकती देते हैं, वो अजामिल बन जाते हैं। ऐसे ऐसे बाबा कल से अजामिल को याद कर, इसको भस्मासुर को याद कर रहे हैं, वो भस्मासुर बन जाते हैं। तो मुरली से चुनिंदा या ऐसे कुछ पावरफुल लाइन वाक्य उठा लेने हैं, शरणागति। शरणागति अर्थात क्या, कौन कौन शरण आए थे आज तक भगवान की, और जब शरण आना अर्थात क्या, रेफ्यूजी अर्थात क्या। बाबा ने कहा तुम रेफ्यूजी हो, शरणागत आए हो बाप की। शरणागत अर्थात अब क्या, कौन शरणागत आता है जिसका कोई नहीं, कौन शरणागत आता है जो बेघर है बेसहारा है, कौन शरणागत आता है असहाय है निरीह है दुखी है उदास है, जो हैरान है परेशान है, ऐसे जो आत्मा है वो शरणागत आते हैं। और शरणागत आने के बाद संपूर्ण समर्पण, जैसे वो साष्टांग दंडवत करते हैं ना भक्ति मार्ग में, करके देखा है किसी ने, करके देखना बाबा के सामने, ट्रांसलेट के सामने ट्रांसलेट बाबा के ट्रांसलेट के सामने देख लेना, कोई नहीं है कमरे में, थोड़ा शरणागत होके देखना कि बस अब तुम ही सब कुछ हो। जैसे द्रौपदी की अवस्था है, सबको, इसको पुकारा उसको पुकारा इसको पुकारा, कोई काम में नहीं आया, आखिर में हे गोविंद बस तुम ही हो, कहां हो। तो वो जो फिजिकल पोस्चर जो है ना, वो भी बहुत काम करता है भक्ति मार्ग में। ऐसे ही साष्टांग दंडवत नहीं करते, दंडवत करके देखो सुकून मिलता है एकदम देवान तोड़ देता है और सुकून मिलता है एकदम, ऐसे लगता है बस अब तू ही है। हाँ, कोई कोई वो हरे कृष्णा में आड़ा दंडवत करते, सीधा नहीं, मतलब यहां पर मूर्ति है श्री कृष्ण की तो ऐसे बाजू में दंडवत, ऐसे देखा है हमने कई बार। महानुभाव पंत काले कपड़े पहनते हैं तो दंडवत, वो बात भी करते हैं एक दूसरे से तो दंडवत, ऐसे बात करते ना दंडवत, जैसे हम ओम शांति वो हरे कृष्ण, कोई राधे राधे तो वो लोग दंडवत बात करते हैं, दंडवत देव राखो तो अलग अलग उपासना है। परंतु शरणागति अर्थात मैं शरण आया हूं, शरण कमल मैं तेरी, सारे मोह विराग हुए, सारे राग विराग हुए हैं। सुंदर सा भजन है अंबे शरणगत मैं तेरी। तो एक है अटेंशन, दूसरा है अनुभव, और तीसरा आज की मुरली से है शरणागति। बाबा हम आपकी शरण आए हैं, सब कुछ तुम्हारा, इस पर आज चिंतन करना है। ओम शांति।